आज का सबक बहुत अहम सबक है इस हवाले से। आज हम वो 10 कमांडमेंट्स पढ़ने वाले हैं जो कि बनी इसराइल को भी दी गई और अल्लाह ताला ने हमें भी इन्हीं का हुक्म दिया। देखते हैं सूरह बनी इसराइल, सूरह इसरा, आयत नंबर 23 से 39 तक। 10 कमांडमेंट्स हम देखेंगे, मगर इसके अंदर अहकामात तकरीबन 26 के करीब अहकामात हैं इसमें। यानी अहकामात अगर आप एक एक गिनने लगे, एक एक हुक्म को गिनेंगे आप, तो 26 हुक्म आपको मिलेंगे। आप इसके अंदर एक एक नंबरिंग करते जाइएगा, देखते जाइएगा कि कैसे ये बनते हैं। और सुभान अल्लाह, ये पढ़ के इतना ज्यादा अल्लाह ताला के साथ और ज्यादा प्यार भी आता है कि या अल्लाह, तूने कितना हमारी वेलबींग के लिए, हमारी खैर ख्वाही के लिए किस तरह के अहकाम दिए। क्योंकि देखिए, मखलूक जो है ना वो अल्लाह की अहल है, यानी अल्लाह ताला का कुंबा है, हदीस में ही आता है। और आप देखेंगे शिर्क के बाद जितने अहकाम हैं आज के जो हम पढ़ने वाले हैं, उनमें कहीं नमाज रोजे जकात का नहीं आ पाते हैं। इसके अंदर सारी बातें, जकात तो नहीं मैं कहूंगी, मगर नमाज रोजे यानी हुक्कुल्लाह में जो बातें आती हैं, जो इबादत आती हैं, कहीं हज की, कहीं उम्रे की, कहीं वो नहीं है, बल्कि लोगों के साथ जो डीलिंग है, इंसानों के साथ जो डीलिंग है उनसे, या जिनको कह सकते हैं हुक्कुल इबाद से मुतल्लिक बातें हैं सारी, जिनको सबसे ज्यादा हम इग्नोर कर देते हैं। हम इबादत किस चीज को समझते हैं कि तस्बीह कर ली, जिक्र कर लिया, नमाजें पढ़ ली, नफल पढ़ लिया, कुरान पढ़ लिया, ये, लेकिन हम ये नहीं समझते कि कुरान के अंदर ही ये अहकाम आते हैं कि इन इंसानों के साथ जो ताल्लुकात हैं और इंसानों के साथ जो मामलात हैं उनको दुरुस्त करने का हुक्म तो कुरान ही देता है ना। मगर हम जब कुरान करीम पढ़ते हैं तो हम उसको बस क्यों, चूंकि एक सवाब की किताब पढ़ के सिर्फ समझ लेते हैं और उसको बस यानी फर 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 पढ़ते जाते हैं, तो हम इन चीजों को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं जो कुरान करीम हमें बता रहा है। और ये बहुत ही अहम अहकाम हैं, ये अल्लाह ताला की तरफ से ही हुक्म आए हैं। और ये 10 हुक्म हमें यहाँ पे मिले हैं, और सारे के सारे ये अहकाम, हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला को इंसानों से कितनी मोहब्बत है, कितनी मोहब्बत है कि हर उसके लिए अल्लाह ताला डिफेंस में खुद खड़े हो गए, और हर ऐसे बंदे के लिए अल्लाह ताला ने अहकाम दिए हैं जो कि खुद अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता, जो खुद अपना हक नहीं ले सकता, ऐसे लगता है कि रब उसकी वकालत के लिए खड़ा हो गया। जैसे रब उसके लिए खड़ा हो गया है कि ये तो नहीं अपना हक ले सकता, मगर उसका हक मैं दिलाऊंगा, उसको कितनी हमदर्दी है, क्योंकि वो मेरा और आपका रब नहीं है सिर्फ, वो सबका रब है, जितने भी इंसान है। और जिस रोल में इंसान कमजोर हो जाता है, मजलूम हो जाता है, या नहीं अपना हक खुद ले सकता, उन सब के लिए रब ने यहाँ पे खुद हुक्म दे दिए। अब इंसान सोचता है कि वो तो नहीं अपने हकूक ले सकते, तो शायद मैं जो मर्जी चाहे करूं, नहीं, फिर ये याद रखना कि उनके आगे उनका रब खड़ा हुआ है जो उनके हकों को दिलाएगा। तो देखते हैं एक एक करके कि किस किस का हक रब रब्बे करीम ने दिलाया और हमें किन के हकूक पूरे करने हैं। आज का सबक ये सोच के ना सुनिएगा कि हाँ देखा वो ऐसे करता है, उसको यादें सुनानी चाहिए, बच्चों को जरूर ये सुनानी चाहिए, नहीं। हम जिस जगह पे भी खड़े हैं हम अपने लिए देखें इन आयतों को कि मुझे ये क्या कह रही है, क्योंकि हर रोल में कहीं ना कहीं हम खुद फिट आते हैं। दूसरों को देखना बंद करके हम अपने आप को देखेंगे, ठीक है। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, पहला हुक्म, वकदा रब्बुका, और फैसला कर दिया है तेरे रब ने, फैसला कर चुका है तेरा रब, हो गया फैसला, यानी कि अल्लाह ताला का हुक्म आ चुका है। क्या अल्लाह ताबुदू इल्ला इया, नहीं तुम इबादत करो मगर उसी की। ये इबादत का हुक्म अल्लाह ताला ने खुद दिया है कि सिर्फ इबादत होगी तो उसकी और किसी की नहीं, में उसकी तरफ से तय हो गया मामला। और इबादत क्या है, इबादत में सजदा भी आ जाता है, दुआ भी आ जाते हैं, सदका खैरात भी आ जाता है, नजर व नियाज भी आ जाती, कि सब सिर्फ उसके लिए होगी और किसी के लिए नहीं होगी। और इबादत के अंदर खुद को इंतहाई जलील कर देना, अलखुदू व तज़ल्लुल, अपने आप को बिल्कुल गिरा देना, बिछा देना मोहब्बत के साथ, ये होती है इबादत। यानी कोई इसलिए नहीं खुद को झुकाता कि कोई मुसीबत है, कोई किसी ने सर पे डंडा रखा हुआ, नहीं, बल्कि इसलिए कि मुझे मोहब्बत है। तो अल्लाह ताला ने अपनी इबादत का सबसे पहले हुक्म दिया, और याहु सिर्फ उसकी, सिर्फ उसकी में कोई और शामिल नहीं हो सकता। फिर अब ये नोट कर लीजिएगा कि ये उन लोगों की सिफात है जो आखरत में कामयाब होंगे, जो आखरत के चाहने वाले हैं, वो कैसी जिंदगी गुजारे, सबसे पहले अल्लाह की इबादत। और अल्लाह की इबादत में अपनी फ्री विल के साथ अल्लाह के आगे झुक जाना, अपने आप को सरेंडर कर देना, अल्लाह ताला की खुशी, उसकी रजा, हर एक की खुशी और रजा से ऊपर, और अल्लाह की नाराजगी का खौफ, हर एक की नाराजगी का खौफ से ज्यादा, और अल्लाह के सिवा कोई और ये हक नहीं रखता हो उसकी जिंदगी में कि उसकी खुशी को, रजा को, नाराजगी को पहले दर्जे पे ले आए। सबसे पहले दर्जे पे अल्लाह ताला की खुशी और रजा और उसी की नाराजगी का खौफ होना चाहिए। जहां पे इंसान किसी और की खुशी, किसी और का डर या किसी और की रजा को मुकद्दम कर देगा, प्रायोरिटी दे देगा अल्लाह के ऊपर, वहीं पे तो शिर्क शुरू हो जाता है। यही तो शिर्क है। अल्लाह की खुशी से बढ़ के किसी को और की खुशी आपको अजीज हो जाए। और दूसरी बात, वबिल वालिदैन एहसाना, और वालदैन के साथ एहसान करो। एहसान यानी एहसान किस वक्त में, एक तो एहसान आम ही है कि सारी जिंदगी उनके साथ अच्छा एहसान करना है, मगर खास ताकीद की गई है यहाँ पे, और वो ताकीद क्या है, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर, जब वो, अगर वो पहुंच जाए तेरे पास बुढ़ापे को, अहदुहुमा औ किलाहुमा, एक उनमें से या दोनों उनमें से, तो अब क्या करना है तुमने, तीन बातें बताई गई। चाहे एक बात आपने नोट की है, अल्लाह ताला ने अपने हक के बाद किसका हक सबसे पहला बयान फरमाया और जिसका हुक्म दे दिया, वो है वालदैन। और वालदैन भी उस एज में, जिस वक्त के वो बुढ़ापे को पहुंच जाए, उस वक्त उनके हक को और ज्यादा बताया गया कि अब उनके साथ बिल्कुल एहसान का रवैया, और उनके बारे में ताकीदें की गई कि उनके साथ कैसा रवैया रखना है तुम्हें। इसलिए कि अल्लाह ताला खालिक है, वो इंसान को पैदा करने वाला है, मगर जो सबब बनते हैं इंसान के दुनिया में आने का, वो है उसके वालदैन। और आपको पता है ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसानों का शुक्र गुजार नहीं हो सकता, वो अल्लाह ताला का भी शुक्र गुजार नहीं हो सकता। तो यहां पर अल्लाह ताला ने इसीलिए अपने बाद इंसानों में सबसे पहले जिसके हक की बात की है, वो तुम्हारे वालदैन है। और उनके लिए क्या फरमाया कि जब वो बूढ़े हो जाएं, बड़ी उम्र को पहुंच जाए, और तुम्हारी निगहदाश्त में हो, तुम्हारी जेरे किफालत हो, तुम्हारे पास हो, तुम्हारे पास रहते हो। अब तुम्हारे पास रहते हैं तो देखें, अब ये क्यों कहा गया आइंदा का पास तुम्हारे, इसलिए कि देखें, जो अब जैसे हम लोग हैं दूर अपने वालदैन से होते हैं, तो दो चार मिनट की कॉल कर लेना, या दो चार मिनट के उनके साथ बातचीत कर लेना हफ्ते में एक दफा, या रोज भी, या साल बाद जाके उनके साथ दो हफ्ते गुजार लेना, ये तो आसान है, मगर जिसके पास रहते हो, जिनके पास उनका वक्त गुजरता है, उनके लिए सबसे मुश्किल होता है डील करना। वो तो आसान ही है, अब आप जाहिर है 10 मिनट की कॉल कर रहे हैं तो वो तो आप अच्छी तरह ही बात करेंगे ना। मसला ही तब आता है जबकि वो आपके पास रहने वाले, तभी गिले शिकवे आते हैं, तभी मुश्किल आती हैं, तभी कई चीजें अनोइंग लगने लगती हैं। क्योंकि इस उम्र में जाहिर है माँ बाप बुढ़ापे को पहुंच जाते हैं, उनकी कई बातें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल बच्चों वाली हो जाती हैं और अकल शऊर खत्म होने लगता है और उसी तरह की जिदें, उसी तरह की बातें। उस वक्त में पहुंच के तुमने उनसे नफरत नहीं करनी, उनसे गिननी खानी, उनको बे ना समझ जान के और उनको अकल से आरी समझ के उनके साथ उनको मजाक करना या उनको अकीर जानना या उनसे चिढ़ना, बुरा समझना, बुरा लगना या डांटना, ये नहीं करना। डील करना मुश्किल होगा ऑब्वियसली, इसलिए कि जब बूढ़े हो जाएंगे तो ये सब चीजें हैं। इसी वजह से खास तौर पे बुढ़ापे की बात की गई। देखें जब इंसान जवान होता है तो उसको बहुत ज्यादा जरूरत भी नहीं होती बच्चों की कि उनके ऊपर डिपेंडेंट हो। जैसे जैसे बूढ़ा होता जाता है और डिपेंडेंसी बढ़ती जाती है, और फिर जब जवान होता है, वालदैन जवान होते हैं तो वो काफी हद तक सेन बातें कर रहे होते हैं, बड़ी मतलब अकल वाली बात करते हैं, लेकिन जब बूढ़े होते जाते हैं तो जाहिर है अकल आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है, रजील उम्र की तरफ जाते हैं। वो तो यही सोच रहे हैं कि हम तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो दूसरा बंदा जान रहा होता है कि अब उनकी समझ उस लेवल की नहीं रही है और वो ऐसी बातें करने लगे हैं जो कि सही नहीं है, और बाज दफा अपने लिए उनके लिए भी नहीं सही होती, उसमें जिद करने लगते हैं। तो ऐसे में तुमने क्या करना है जब तुम्हारे पास रहते हुए ऐसा होगा? फला तकुल लहुमा उफ्फिन, तो ना तुम कहना उन दोनों को उफ। उफ क्या है? उफ का लफ्ज हालांकि कितना छोटा सा लफ्ज है, मगर इसी के अंदर छुपी हुई है दिल की घुटन, कराहत, क्या मसला है, नाराजगी। यानी इंसान बहुत ज्यादा नहीं बोल रहा कुछ भी, उफ वो इस तरह करना, हकारत, नापसंदीदगी और बहुत माइन्यूट सी, इतना भी ना कहना, इसलिए कि उनके दिल पे बहुत ये गरां गुजरेगी, उनका दिल इससे जख्मी हो जाएगा। देखिए बदजुबानी करना, बहसें करना, झगड़े करना, वो तो दूर की बात है, उफ भी नहीं कहनी। कि जरा सा भी ऐसा रवैया नहीं रखना जो कि बदतमीजी का, बदखलाकी का हो। बुरी बातें और लंबी चौड़ी तो दूर की बात है। और अल्लाह ताला ने एक कलिमा बता के, अब जैसे आप हम कहें हमारे पास तो उफ का लफ्ज ही नहीं है, हम हमारे यहां तो कुछ और ही लफ्ज बोले जाते हैं, तो जो भी लफ्ज बोले जाते हैं, मसलन है कि आपके यहाँ ओ गॉड, या ये उसका उफ है, ठीक है। इसी तरह कई जगह पे ऐसे हो जाता है बच्चों का रवैया कि आंखें रोल करने लगते हैं, हम ऐसे करते हैं, यानी बाप या माँ की बात के जवाब में हूं, इतना सा भी नहीं कहना। कैसे दिल कट जाता होगा उस माँ का, और उसको वो सारी बातें याद आती होंगी कि उसने किस तरह मौत की कश्मकश बर्दाश्त की थी इस बच्चे को पैदा करने के लिए। एक माँ ही जानती है इस तकलीफ को कि मेरी जान जा सकती थी, लेकिन मैंने वो तकलीफ सह के बच्चे की खातिर, और कैसे मैंने इसको पैदा किया, कैसे मैं इसको दूध पिलाया, कैसे मैंने अपना आराम कुर्बान किया। सोई हुई माँ रातों को उठ जाती है, उठते ही बच्चे को मोहब्बत से उठाती है, कहीं उसको गर्मी ना लग रही हो, सर्दी ना लग रही हो, ये ना हो जाए। और वो मोहब्बत करने वाला बाप सारे दिन की थकावट के बाद बच्चे की चीखों पुकार बर्दाश्त करता है, अपनी थकावट भूल जाता है, कदे की तरह सारा दिन काम करता है, मेरे बच्चे की फ्यूचर अच्छा हो, उसको ना किसी चीज की तकलीफ हो, उसको हर चीज मुयस्सर हो, उसको हर तरह का आराम मिले। और एक बात बच्चा तोतली जुबान में 100 दफा कहता है ना, 100 दफा ही माँ बाप खुश होते हैं कि आज हमारे बच्चे ने ये लफ्ज कहा। और बच्चा चलने लगता है, माँ को ऐसा लगता है जैसे मैं भी हल्की हल्की प्रवास करने लगी, उड़ने लग गई, और बातें करने लगता तो उसकी बातें हर जगह बताती फिरती, बाप ठंडी छाऊं की तरह होता है। तो अल्लाह ताला इंसान को फरमाता है तुमने ऐसी हस्तियों को जिन्होंने तुम्हारे लिए इतनी कुर्बानियां दी, ये तुम्हारे लिए काबिले एहतराम है, इनको उफ भी ना कहना कि इनको कोई बात तुम्हारी जुबान की बुरी लग जाए। देखिए ये रिश्ता ऐसा होता है, माँ बाप के इस दिल में अल्लाह ताला ने नेचुरल बच्चों की मोहब्बत डाली हुई है, लेकिन बच्चों के दिल में माँ बाप की मोहब्बत नहीं होती नेचुरली, बच्चों के दिल में नहीं होती। तो इसलिए अल्लाह ताला ने बच्चों को कहा कि तुम माँ बाप के साथ ऐसे ना करना, वाला तनहर हुमा, और ना तुम उनको झिड़कना, अपने माँ बाप को झिड़की ना देना, डांटना नहीं, कोई ऐसे हकारत के कलिमात ना कहना, कोई ऐसी सख्त बात ना कहना, लाउड ना होना उनसे। तो कई दफा इंसान उफ तो नहीं कहता लेकिन लाउड होता है, शाउट करता है, वो भी नहीं करना। वकुल्लहुमा, और कहना उनको कौलन, बात करीमा, इज्जत वाली। अब एक एक चीज गिनते जाएं कि क्या क्या आ रही है, 10 तो चीजें हैं, 10 कमेंडमेंट्स हैं, लेकिन ये जो एक एक चीज है ना, ये अलग अलग एक एक हुक्म आ रहा है, इसको भी आप देखें। एहसान उनके साथ करना, उनको उफ नहीं कहना, उनको झिड़कना नहीं है, उनको कितनी सारी बातें वालदैन के लिए आ रही। अब मुझे बताएं जहां पे उफ कहने की इजाजत नहीं है वहां पे ओल्ड होम में छोड़ के आने की इजाजत हो सकती है कि वहां पे फेंक आना? अल्लाह अकबर। तो क्योंकि इस बारे में पूछ बहुत सख्त है, यानी कुछ गुनाह ऐसे हैं कि उनकी सजा जो है ना इंसान को इस दुनिया में भी मिलती है, आखरत में मिलनी ही है, लेकिन इंसान मरता नहीं है जब तक कि उनकी सजा ना भुगत ले इस दुनिया में। और उनमें एक वालदेन की नाफरमानी भी, और इसी को हम बहुत लाइटली लेते हैं। अक्सर देखा गया कि और लोगों के साथ फिर भी हंस खेल के बात करेंगे, हंस खेल के मिलेंगे दोस्तों के साथ, इनके साथ, लेकिन जहां माँ बाप आ जाएंगे वहां पे बिल्कुल ऐसा सर्द रवैया, और एक मुसीबत की तरह, और एक उनका हाल जानने की कोशिश ही ना करना। और आज ये चीज कयामत की निशानियों में से एक है, लेकिन आज ये चीज वाकई ये निशानी भी पूरी हो गई है कि खाल खाल कोई ही मिलता है जो वालदेन को खुश करने वाला बच्चा हो, जो ऐसी औलाद हो, वरना ज्यादातर वालदेन रोते हुए नजर आते हैं। अब यहाँ पे आया बात कि कौलन करीमा उनको कहो, ऐसी बात जो इज्जत वाली, जो उनका दिल खुश कर दे। तुम खुद ढूंढो कि कैसी वो बात कैसी हो सकती है, यानी ऐसी बात करो जैसे बहुत तमीज के साथ, मुहज्जब अंदाज में, करीम होता है नोबल, नोबल बात करो। एक आदमी ने पूछा था, या रसूल अल्लाह माँ बाप का क्या हक है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो दोनों तेरी जन्नत है या तेरी जहन्नम है, यानी अगर खुश कर दिया तो जन्नत, अगर ना खुश किया तो जहन्नम। फरमाया ना, माँ के कदमों तले जन्नत है, तो अगर कदमों तले किसी के कोई चीज हो, खुद सोचें कोई चीज भी हो, अब पैर के नीचे मिसाल के तौर पे कोई छोटा सा कीड़ा हो, अब आप चाहें तो उसको मसल दें, चाहें तो उसको छोड़ दें, इसी तरह तुम्हारी जन्नत जो है ना उसके पैर तले है, चाहे वो तुम्हारी जन्नत को क्रश कर दे और चाहे तुम्हारी जन्नत को तुम्हारे लिए रहने दे। ये है बात। एहसान दानिश, उनकी एक किताब है जहाने दानिश, उसमें उन्होंने अपनी माँ के बारे में लिखा है कि जब मेरी माँ बीमार हुई तो मैंने अपनी बीवी से कहा कि ये तो मेरा सरमाया है, मैं इसमें किसी की शराकत बर्दाश्त नहीं कर सकता, और तुम्हें बिल्कुल इनको हाथ नहीं लगाने की जरूरत, इनकी सारी खिदमत मैं खुद करूंगा। और गरीब आदमी थे, उन्होंने है, जाहिर है गुर्बत में जिंदगी गुजर गई थी उनकी, और घर में कुछ धोने वोने का इंतजाम वगैरह नहीं था। तो वो लिखते हैं अपनी किताब में कि मैं माँ का बिस्तर उठाता, रोजाना 2 मील दूर नहर पे जाके धोता, हवा में उसको सुखाता और सुखाते हुए लेकर आता, और जब तक माँ जिंदा रही मैं उसकी चारपाई पे लग के खड़ा हो गया। देखिए आप सर, क्योंकि माँ बाप ऐसी चीजें जिनका बदल नहीं ला सकता इंसान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा में अव्वा में पड़ाव डाला था और अपनी माँ की कब्र पे बैठ के घंटों रोए थे। साहबा भी हैरान हुए कि किसकी कब्र है जिसके ऊपर इतना रो रहे हैं। एक साहब भी आए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि मेरा बाप है, मुझसे पूछे बगैर मेरे पैसे ले लेता, उसे पूछता भी नहीं। तो बात एक समझ जाती है कि हाँ बेटा कमाई कर रहा है, बाप पूछ तो ले बेटे से। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा बुलाओ उसको। उसको बुलाया, उसे पता चला कि मेरे बेटे ने मेरी शिकायत की है, तो उनको बड़ा दुख हुआ बाप को। तो उन्होंने कुछ अशआर कहे, जुबान से नहीं कहे, दिल ही दिल में शेर कहते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आ रहे हैं। जिब्राईल अलैहिस्सलाम उनके आने से पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, या रसूलल्लाह अल्लाह ताला फरमा रहा है वो आदमी आ रहा है, उससे कहना पहले वो शेर सुनाओ जो तुम्हारी जुबान से तो निकले नहीं मगर तेरे अल्लाह ने सुन लिया, वो शेर सुनाओ। अच्छा, वो आदमी आया जो बाप था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई वो शेर सुनाओ पहले जो तुम्हारी जुबान से भी नहीं निकले, तुमने दिल में ही कहे। वो कहने लगा या रसूल अल्लाह पे ईमान हमारा बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है इन बातों की वजह से, क्या कहने उस रब के कि मैंने तो जुबान से भी नहीं कहे, जुबान पे आए ही नहीं और रब ने सुन लिया, सिर्फ ये तो मेरे जहन में ही थी बात। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुमने क्या कहा? कहने लगा मैंने कहा जो शेर थे उसने अरबी में सुनाए, उनका तर्जुमा आपको, जाहिर है वो तो बात नहीं बन सकती मगर उनका तर्जुमा आपको मैं बताती हूँ कि उसने कहा कि मैं ये कहता आ रहा था कि मेरे बेटे जिस दिन तू पैदा हुआ हम तो उसी दिन मर गए, फिर हमने तेरे लिए जीना शुरू कर दिया, यानी हम अपने लिए नहीं फिर जीते थे, फिर तेरे लिए जीते थे, हम अपने लिए जीना छोड़ गए जिस दिन तू पैदा हुआ, हमने अपना सब कुछ तुझ पे लगा दिया, तेरी एक मुस्कुराहट देखने के लिए कोल्हू के बैल की तरह गर्मी और सर्दी के थपेड़ों को सहते रहे, दुख दर्द झेलते रहे, तुझे तर खिलाने के लिए खुद खुश्क खाया, तुझे ठंडा पिलाने के लिए खुद गर्म पिया, तुझे सुलाने के लिए खुद जागे, तुझे सुख में रखने के लिए खुद दुख उठाए, तुझे ठंडी हवाओं से बचाने के लिए खुद ढाल बन गए, तुझे धूप से बचाने के लिए हम खुद तेरा साया बन गए, चादर बन गए, जब कभी तू बीमार हुआ तो तुझसे ज्यादा हम बीमार हो गए, तेरी आह पे हमारी हाय निकलती, तेरे आंसू पे हमारी चीखें निकलती, और हम दोनों माहिए बेआब की तरह तड़पते, पता नहीं तू मर ना जाए, यानी इस धड़का लगा रहता हमें कि कहीं तू तुझे कुछ हो ना जाए, बीमारी और मौत तो अपने वक्त पर आती है पर तेरा बीमार होना हमें सारी रात तड़पाता था, हमें ये लगता था तू नहीं हम बीमार हो गए, तू नहीं हमें दर्द उठाए, तू नहीं तो हम तड़प रहे हैं। और एक आंसुओं का सैलाब था जो थमता नहीं था, और अंदर में गमों की घटा थी काली स्याह जो छटने का नाम नहीं लेती, इसी तरह हम चक्की में पिसे और कोल्हू के बैल की तरह हम जुते चले और थके और बिटे और पिसे, और क्या हुआ हमारी जवानी का रस नुचड़ता चला गया और तेरे बचपन में जाके वो भरता चला गया, यानी जैसे समझने के एक एक कतरा है वो इधर से नुचड़ रहा है और उधर उसको मिल रहा है, इसने अपनी जवानी गुलाई तो वो बच्चा परवान चढ़ रहा है, यानी वो ऊपर को जा रहा है या नीचे को जा रहा है, ऐसे लग रहा है कि जैसे ये अपने आप को नचोड़ के उसको दे रहे हैं कि वो अपनी जवानी पा सके। हमारे रंग रूप बिगड़ते चले गए, तेरा रंग रूप निखरता चला गया, हमसे जवानी का रस निकलकर तेरी कमजोर हड्डियों में उतरा और हमसे बुढ़ापे ने रंग छीन लिया, जवानी ने तुझे रूप बख्श दिया, बुढ़ापे ने हमारे पत्ते झाड़ के रख दिए और जवानी ने तुझे बराबर कर दिया, सब्ज़ सरसब्ज़ कर दिया, तू लहलहाने लगा और हम خزاں کے تھپیڑوں کا شکار ہو گئے، تو سیدھا ہو گیا اور ہم رکوع میں چلے گئے۔ دیکھیں بچہ سیدھا ہوتا جاتا ہے، کھڑا ہوتا جاتا ہے، یعنی وہ جوان ہو رہا ہے، اور وہ ماں باپ کیا ہو رہے ہیں، رکوع میں جاتے جا رہے ہیں، وہ جھکتی جا رہی ہے ان کی کمر۔ تو طاقت میں آیا، ہم نے لاٹھیاں پکڑ لی، اب ہمیں امید لگ گئی، جیسے ہم انگلی پکڑ کے چلے، جیسے ہم نے اس کے پیشاب پخانے دھوئے، جیسے ہم نے اس کو لوریاں دی، جیسے ہم اس کے لیے روئے تڑپے جاگے، اور کچھ نہیں تو ہمارا حال پوچھ لے گا، یعنی اور کچھ نہیں کرے گا تو کم از کم اتنا تو کرے گا، ہمارا حال پوچھ لے گا، ہمارا تھوڑا بہت تو خیال رکھے گا۔ لیکن ایک دم تیرے تیور بدل گئے، تیرا منہ چڑھ گیا، تو دوست کو قریب کرنے لگا، ہمیں دھکے دینے لگا، ہمیں گریبان سے پکڑ کے جھنجھوڑا، دوستوں کی محفل میں جا کے رونق بنا۔ ہم نے کبھی پکارا تو تیرے تیور بدل گئے، تمہیں بڑے سخت آواز میں کہا، کیا سر کھاتے ہو؟ تو ہم دونوں بیٹھے، دونوں پریشان، کیا ہوا، ہم پریشان کہ کیا ہوا، میں اسے پالتا رہا، نہیں نہیں غلطی لگ گئی، اس نے مجھے پالا، میں نے نہیں اسے پالا، ورنہ کتا بھی احسان مان رہا ہے۔ میں اپنی 40 سالہ زندگی کو جھٹلا رہا ہوں، میں نے اپنے بیٹے کو نہیں پالا، میرے بیٹے نے مجھے پالا، جبھی تو اس کا تیور بدلا، اس کا منہ چڑھا۔ اچھا میرا بیٹا، تو بیٹا نہیں بنا تو پڑوسی تو بن جاتا، پڑوسی بھی نہ بن سکا۔ یہ وہ دردناک داستان ہے جو الفاظ کے روپ میں جب اس کی زبان پر آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے تو آنسو تھے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اللہ اکبر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلسل رونے کی وجہ سے آپ کی دھاڑی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکے کو پکڑا اور فرمایا کہ جا تو اور تیرا مال تیرے باپ کا، اٹھ کے چلا جا میری مجلس سے۔ کیسا درد تھا اس کے ان شعروں میں، اور سوچیں کہ یہ کبھی نثر میں بتایا، اگر یہ شعروں کے اندر ہو تو کیا زبردست بات ہوگی جو اس نے کہی۔ اور اب پتہ ہے کیا، ایک حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ جب لوگ حکومت کا پیسہ ہڑپ کر لیں گے، جب لوگ امانت میں قیانتیں کریں گے، مال غنیمت سمجھ لیں گے اس کو، جب لوگ زکوٰۃ سے انکار کر دیں گے، جب دین سے ہٹ کے دنیا کا علم حاصل کریں گے، ماں باپ کے نافرمان ہوں گے، بیویوں کے فرما بردار ہوں گے، دوستوں سے اچھی طرح ملیں گے، باپ کو دیکھ کے منہ پھیر لیں گے، راستہ بدل لیں گے، کہیں کوئی کام نہ کہہ دیں، اور بھی بہت ساری اس میں باتیں ہیں کہ یہ کریں گے، یہ کریں گے، مسجدوں میں لڑائیاں ہونے لگیں، یہ مرد ریشم پہننے لگیں گے، اس طرح کریں گے، تو اس وقت کے بارے میں فرمایا، 15 باتیں بتائی گئیں، اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب میری امت میں یہ چیزیں آ جائیں گی نا، پھر انتظار کرنا سرخ آندھیوں کا، زلزلوں کا، زمین میں دھس جانے کا، جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جاتا ہے، اس کے دانے بکھرنے لگتے، اس طرح آندیاں آئیں گی، طوفان آئیں گے، زلزل ایک کے بعد ایک، یعنی ایک کے بعد ایک، جیسے دانے گرتے ہیں نا ایک کے بعد، اس طرح ہونے لگے جب یہ باتیں ٹرو ہوں گی۔ اور ان میں 2 باتیں میں نے آپ کو بتائی کہ لوگ ماں باپ کے نافرمان ہو جائیں گے، دوستوں سے اچھی طرح ملیں گے، باپ کو دیکھ کے منہ کر لیں، یعنی یہ حال ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا ایسے وقت میں تم، یعنی جب تمہارے ماں باپ ایسی عمر کو پہنچ جائے، تو تم نے ایسے رویے نہیں رکھنے کہ ان کو بڑھاپے میں پہنچ کے اپنی زبان سے تکلیف دو، تمہاری زبان کھلے تو ان کے دل چھلنی ہو جائے۔ والدین کو یہاں پہ ایسے پورٹری نہیں کیا گیا جیسے کوئی کانچ کی گڑیا سی ہوتی ہے، یہ کانچ کے دل ہیں ان کے، اس لیے کہ وہ والدین کہتے ہیں ہم نے تو اس کو پیدا کیا، اس کو پالا، اس کو آج یہ اٹھ کے ہمیں کہتا ہے آپ کو کیا سمجھ ہے، آپ کو کیا پتا، آپ آرام سے بیٹھے۔ آج قیامت کی نشانیاں واقعی پوری ہو گئی کہ آج والدین بچوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انسٹیڈ آف کے بچے والدین کو خوش کرنے کی، والدین کہتے ہیں ہمارے منہ سے نہ کوئی ایسی بات نکل جائے کہ بھائی ان کو غصہ نہ آ جائے۔ آج بچوں نے کیا قول کریم کہنا ہے، والدین قول کریم کہنے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، تم جھکا دو اپنے کندھوں کو
اپنے بازوؤں کو ان کے سامنے عاجزی کے ساتھ رحمت سے شفقت سے ان کے آگے جھک جاؤ. یعنی عاجزی کا رویہ، جسمانی پوسچر بھی ایسا ہو کہ جھکے ہوئے ہو، اور تمہیں ویسے بھی تم ان کے سامنے اپنے آپ کو نیچا رکھو. یعنی جیسے اپنے آپ کو، یعنی فزیکلی نہیں بھی صحیح، ایک فزیکلی بھی ہوتا ہے نیچے کرنا، اپنا عاجزی کرنا، لیکن اپنے آپ کو ویسے بھی ان کے سامنے بچھا دو، یعنی ان کی بات کو اس طرح تمہارے ہوگی تم بچھے ہوئے ہو ان کے سامنے. جس کو ہم بچھے ہوئے کہتے ہیں اس کے اندر ضروری نہیں کہ آپ نیچے ہی لیٹ گئے، مگر اس کا مطلب ہے کہ آپ کا دل بچھا ہوا ہے ان کے آگے، جیسے کسی طاقتور کے آگے کوئی ہوتا ہے. اس طرح تم ان کے آگے، جیسے غلام ہوتا ہے نا اپنے آقا کے آگے، کوئی طاقتور آقا ہے اس کے آگے کیسے بچھ جاتا ہے، کیسے نیچے اپنے آپ کو کر لیتا ہے، اس طرح تم اپنے آپ کو نیچے جھکا دو ان کے آگے. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اور تم کہو ان کے لیے، دعائیں کرو ان کے لیے. اللہ تعالیٰ نے سوچیں دعا بھی سکھا دی، رب ارحمہما، اللہ اے میرے رب ان دونوں کے اوپر رحم فرما. کما ربا یعنی صغیرہ، جیسے ان دونوں نے مجھے پالا بچپن میں، جیسے یہ دونوں میرے ساتھ تھے، انہوں نے میرے ساتھ رویہ کیا بچپن میں. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو لے جا کے کہاں کھڑا کر دیا کہ بچپن کی یادیں اس کو دلائیں، اپنے بچپن کو یاد کرو. اگر آپ اپنے آج کو یاد رکھو گے نا، جس وقت ہم جوان ہیں، ہمارے اندر طاقت ہے، تو ہم کبھی بھی ان کے ساتھ یہ رویہ نہیں کر سکتے جو کہ یہاں پہ دیا گیا. جب تک آپ اپنے اس ٹائم کو نہ یاد کریں جس میں آپ بالکل ہیلپ لیس تھے، آپ کچھ کرنے کے قابل نہیں تھے، بالکل بے آسرا تھے، اپنی خوراک بھی خود نہیں لے سکتے، اپنی گندگی صاف نہیں کر سکتے تھے، اوپر مکھی بھی بیٹھ جائے تو اپنے منہ سے اڑا نہیں سکتے تھے، بالکل بے یار اور مددگار. اس وقت ماں نے کتنی محبت کی تھی، اس وقت ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا تھا، پیدا ہوا تھا تو 2 سال دودھ پلایا، انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، تم کھا نہیں سکتے تھے، ماں تمہارے پاس بیٹھ کے تمہیں گھنٹوں لگاتی تھی کھلانے کے لیے، تم بول نہیں سکتے، تمہارے پاس بیٹھ کے تمہیں بولنا سکھاتی تھی، تم توتلی آواز میں، دوتلی زبان میں بات کرتے تھے، تمہیں کس طرح وہ تمہاری بات کو سمجھنے کی کوشش کرتی تھی، تمہیں اچھے برے کی تمیز اس نے سکھائی، تمہیں اپنے خاندان سے متعارف کرایا، تمہیں کس طرح حقوق و فرائض سکھائے، کس طرح تمہیں سکول بھیجا، کس طرح تمہاری خاطر دکھ اٹھائے. آج تم جوان ہو گئے، تمہاری صلاحیتیں نشو نما پا گئی، آج وہ ماں تمہاری توجہ کی مستحق ہے. پھر باپ کو دیکھو، اس نے جوانی گلا دی تمہاری ضروریات، تمہاری خواہشات پوری کرنے کے لیے، سارا سارا دن لگایا، راتوں کی نیند قربان کی، خوراک تمہیں ملے، اچھی تعلیم تمہیں ملے، آج وہ باپ تمہاری توجہ کا مستحق ہے. دیکھو تو صحیح انہوں نے کیا کیا خدمتیں تمہارے لیے انجام دی، کوئی ایسی بے لوس خدمت کر سکتا ہے؟ تو جنہوں نے اپنی جوانی گلا کے تمہیں جوان کیا، اب ان کا بڑھاپا تمہارے لیے قدر و قیمت والا ہونا چاہیے. بڑھاپا ایز اٹ از ہی عزت کا مستحق ہے، لیکن اگر والدین بوڑھے ہو جائیں تب تو اور بھی زیادہ ان کے دل کا خیال رکھنا، دل نہ دکھ جائے، کیونکہ اس دل میں تمہارے لیے بہت محبت ہے، اس دل میں تمہارے لیے بہت پیار ہے. اور آج دیکھیں ہم سب اپنے آپ کو دیکھیں، میں یہی کہہ رہی ہوں، آپ اپنی اولادوں کو نہ دیکھیں کہ وہ جی ایسے ہو، ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم سب سے کہیں نہ کہیں کوتاہیاں ضرور ہوئی ہیں، ہم سب سے کہیں نہ کہیں اوف کیا بہت بہت کلمات خود کہے گئے ہیں، اب ہم نے کیا کرنا ہے ان کے لیے. یہ دعا اگر وہ زندہ ہیں تب بھی، اگر وہ جس کے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں تب بھی، یہ دعا ان کے لیے مانگنی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بھی بچپن یاد کرایا، یاد کرو وہ بچپن، تب تمہارے دل میں ان کے لیے شفقت آئے گی، محبت آئے گی. تو ہم نے ایوری نماز میں، اب سے ہمارا انشاءاللہ تعالی یہ طریقہ ہوگا، ایوری نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے، اس لیے سلام پھیرنے سے پہلے کہہ رہے ہیں تاکہ آپ کو یاد رہے، سلام پھیرنے سے پہلے جو ہماری آخری دعا ہو وہ یہی ہو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. انشاءاللہ کہ ہم اپنے والدین کا حق تو وہ دے نہیں سکتے، ان کے سامنے کتنی ہم نے، دیکھیں یہاں پہ تو کہا گیا ان کے سامنے اپنے پر بچھا دو، انکساری، عاجزی، جھکاؤ، بچھ جاؤ، آواز بھی پست رکھو ان کے سامنے، آگے بڑھ کے بولنا تو دور کی بات ہے، اونچا بولنا یا یہ بولنا تو دور کی بات ہے، اوف بھی نہیں کرنا، نہ ان سے آگے بڑھ کے چلنا ہے، نہ ان سے زیادہ بڑی اپنی بات کو رکھنا ہے. اور رحمت کا لفظ دیکھیں، محبت نہیں ہے، رحمت ہے، اور رحمت بے لوس ہوتی ہے، کسی غرض کے بغیر ہوتی ہے. تو یعنی والدین جب بوڑھے ہو جائیں تو انسان اب کہتا ہے ان سے کیا ملنا، کہ نا پہلے تو ان کی ضرورت تھی، اب مجھے کیئر چاہیے تھی، اب کیا ان سے ملنا، اب تو یہ فالتو چیز ہے. انسان اپنے بچوں کی طرف دیکھتا ہے، اب ان کو کیا، یہ تو ایکسٹرا ہے. نہیں، تو یہ تمہاری رحمت کے مستحق ہیں. دیکھو کیسے اس رب کریم نے، وہ والدین جب اپنا خود حق نہیں لے سکتے، وہ ان کو وہ فرما دیا، ان کا حق دلانے کے لیے خود رب کریم ان کی وکالت فرما رہا ہے. نرمی، رحمت اور دعا، کیا دعا اس پیارے رب نے سکھا دی، ان پہ رحم فرما. یا اللہ یہ میرے محسن ہیں، وہ جنہوں نے میری پرورش کی، مجھے سنبھالنے والے، اس مقام تک پہنچانے والے. یا اللہ بچپن میں انہوں نے میرے ساتھ رحمت کی ہے، شفقت کی ہے، یا اللہ تو ان پہ مہربان ہو جا، ان کے بڑھاپے کے مسائل کو، ان کی تلخیوں کو آسان کر دے. حافظ ابو بکر اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت برعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے اپنے والد سے یہ روایت کیا ہے کہ ایک آدمی طواف میں تھا اور اس نے اپنی والدہ کو اٹھا کے طواف کرایا تھا. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ آپ نے فرمایا نہیں، ایک سانس کے برابر بھی نہیں. یعنی جتنی ایک سانس کی قیمت ہے نا، اس کے برابر بھی نہیں تم نے ابھی اپنی والدہ کا حق دیا. تو ان کے ساتھ، والدہ کے ساتھ بھی رویہ تب ہی اچھا ہوگا جب آپ بچپن کو سامنے رکھیں گے، بچپن کی محبتوں کو، شفقتوں کو. تب اگر آج کو دیکھیں گے نا تو شاید نہ ہو سکے صحیح، کیونکہ بڑھاپا ظاہر ہے کمزوری ہے، اور اس کے اندر انسان کئی باتیں ایک کر کے پھر بار بار ریپیٹ بھی کرتا ہے، کئی نا سمجھی کی باتیں بھی ہوتی ہیں، تو اس وقت میں غصہ آ سکتا ہے. اگر آپ اپنا بچپن یاد کریں گے تو پھر نہیں آئے گا. اور ظاہر ہے جب انسان خود جوان ہوتا ہے تو پھر تو وہ اپنی جوانی کے زوم میں اتنا ہوتا ہے، پھر اس کو چھوٹی چھوٹی بات پہ بھی غصہ آنے لگتا ہے. رب نے فرما لیا اپنا بچپن یاد کر لو نا، تم بھی تو ایک ایک بات کتنی کتنی دفعہ ریپیٹ کرتے تھے، جتنی دفعہ بھی کرتے تھے ماں باپ شفقت سے ہی سنتے تھے. اللہ اکبر. اور جب تمہارے پاس قوت نہیں تھی تب انہوں نے تمہارا کیسے خیال رکھا تھا، آج ان کے پاس قوت نہیں، جب تمہیں اپنی ضروریات کے پورا کرنے کے لیے ان کی محتاجی تھی، آج ان کو محتاجی ہے تمہاری. اسی طرح آج بہت سارے والدین ایسے ہیں کہ جن کو مال کی تو نہیں ضرورت ہوتی، ان کو وقت کی ضرورت ہوتی ہے، وقت دیا جائے ان کو، ان کے پاس بیٹھا جائے. اب اس میں بھی اپنے بچپن کو یاد کریں، اگر جب ہم بچے تھے تو والدین پیسوں کی گڈیاں لا کے ہمارے پاس رکھ دیتے، ہمارے سرحانے رکھ دیتے اور ایک میڈ کے پاس چھوڑ دیتے، تو کیا وہ کام ہو سکتا تھا؟ نہ، انہوں نے بھی تو اپنی ساری ضروریات کاٹی، اپنی خواہشات کو قربان کیا، اپنی جوانیاں گھلائیں، پڑھایا لکھایا، وقت دیا، تو تب پروان چڑھے ہم. آج ہم سوچتے ہیں کہ بس ان کے لیے میڈ رکھ دیں، ان کو کھانا پینا سب ٹائم پہ مل جائے، دوائی ٹائم پہ مل جائے، بس ٹھیک ہے، اب اور ہم کیا کر سکتے ہیں، اور ان کو کیا چاہیے. ایک صاحب کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ وہ اپنی والدہ کے پاس جب جاتے تو جا کے ان کو وہ بچپن کی نظمیں سناتے، وہ چھوٹی چھوٹی کہانیاں، وہ باتیں پہلے وقت کی، تاکہ ان کا دل بہلے اس سے. تو یعنی کس طرح سے ان کا دل بہلانا ہے، کیسے ان کو خوش رکھنا ہے، ان کا دل خوش کر دینا، یہ خود ہی انسان کو سوچنا. ہر ایک کے والدین کے ڈفرینٹ ایک شوق اور وہ ہوتے ہیں، کس طرح سے ان کو خوش کیا جائے. صرف وہاں پہ والدین کی یعنی نہیں بات ماننی جہاں پہ وہ کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی بات کرے. دیکھیں دو ایکسٹریم پہ لوگ چلے جاتے ہیں، ایک ایکسٹریم ہر کم ہی ملتی ہے لیکن ہے ضرور، कि वालदेन कहेंगे कि सूरज अगर मगरिब से तुलू होता तो उन्होंने कहना मगरिब से तुलू होता, चाहे अल्लाह की बात आ जाए रसूल की बात आ जाए वो तोड़ के वालदेन का हुक्म मानना, लेकिन वहां पे नहीं माना जाएगा जहां पे अल्लाह रसूल का हुक्म आ जाएगा। मसलन है कि अल्लाह का हुक्म यह है कि सिला रहमी करो, वालदा कह रही है कि नहीं तुमने फलां अपनी पुप्पी से बात नहीं करनी, तुमने अपने चचा से बात नहीं करनी, बाप के साथ तुमने नहीं रखना अपना, इसने मुझे बड़ा तंग किया है। अक्सर होता है कि डाइवोर्सेस हो जाती हैं, फिर वो वालदा के जाहिर दिल के ऊपर बड़ी या ससुराल वालों ने बड़े जुल्म किए होते हैं और वाकई किए होते हैं, और वो फिर उनके लिए बड़ा वालदा के लिए बड़ा तकलीफ दे होता है। अब वो बच्चों को कहती है कि तुमने भी नहीं मिलना या फलां के साथ नहीं मिलना फलां उस रिश्ते के साथ, तो उस वक्त क्या है अब मिलना भी है क्योंकि अल्लाह का हुक्म है सिला रहमी और वालदा का भी हुक्म मानना, तो आप क्या करेंगे? ऐसे उनको मिलें कि उनको भी ना पता चले कि इनका यानी उनको दुख हो और उनको तकलीफ हो, उनको भी नहीं तकलीफ देनी, लेकिन साथ साथ वो जो अल्लाह का हुक्म है उसको भी पूरा करना। तो रब्बिरहमहुमा कमा रब्बायानी सगीरा, जैसे उन्होंने बचपन में अपनी पूरी सलाहियतें कुव्वतें लगा के मेरे पर रहम किया, मेरी अपनी एक एक कलकारी को याद करें कि जब खुश होती थी याद करें कि माँ ने कैसे हंसाया। कई दफा हम खुद माए हम देख रहे हैं बच्चों के साथ हम खुद ही बच्चे बन जाते हैं, बिल्कुल उनको हंसाने के लिए कितनी तरह की बोलियां ऐसे बोल के दिखाते हैं कि वो हंस दे। अब वो बड़ा बच्चा जब हो जाता है तो अब उससे डिमांड है कि अब तुमने कोशिश करनी है कि तुम इनको कैसे खुश करो कैसे राजी करो कैसे हंसाओ, जैसे कल माँ कोशिश करती थी। आज माँ कभी वो कार्टून की वो उसको कॉपी करके वैसी आवाजें निकालेगी, बाप कभी इस तरह की बोली बोलेगा कि ये खुश हो जाए बच्चा। बाप क्योंकि बार दफा बच्चों को ये शिकायत होती है कि इनका क्या करें, इनको हर वक्त गुस्सा ही आता रहता है, तो भाई देखोगे गुस्सा दिलाने वाले काम कौन से हैं वो मत करो। अगर एक शौहर को पता है कि मेरी बीवी को किस बात पे गुस्सा आता है, बीवी को पता है शौहर को किस बात पे गुस्सा आता है, बच्चे को नहीं पता चल सकता कि माँ बाप को किस बात पे गुस्सा आता है, तो फिर उन नापसंदीदा चीजों को छोड़ दें। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ये दुआ तुमने अपने वालिदैन के लिए मांगी, ये दुआ इतनी प्यारी दुआ है इसलिए कि बाज दफा हम जो हमने उनके दिल दुखाए होते हैं, जो हमने उनको तंग किया होता है अपनी जवानी में अपनी टीन एज में, उसके बाद अब रिग्रेट्स होते हैं कि हाय अब हम क्या करें, अब किस तरह इसको कॉम्पेंसेट करें। तो उसके अंदर आप ये देखें कि एक हदीस से हम इसमें लेते हैं रहनुमाई कि हजरत मालिक बिन रबिया सादी के साथ बयान फरमाते हैं कि जिस वक्त मैं बैठा हुआ था उस वक्त एक अंसारी आया और कहा या रसूल क्या माँ बाप के फौत होने के बाद भी इनके साथ कोई नेकी करना मेरे जिम्मे है? आपने फरमाया हाँ, चार किस्म की नेकियां, उनकी नमाज जनाजा पढ़ना, उनके लिए इस्तगफार करना, उनके अहद को पूरा करना, उनके साथ इनके दोस्तों की ताजीम करना और उनके रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करना। ये वो नेकियां के जो मौत के बाद भी काफी, यानी अगर दुनिया में नहीं भी है माँ बाप और आज रिग्रेट हो रहे हैं तो फिर उनके जो दोस्त अहबाब उनके जो रिश्तेदार थे, हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा के बीवी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मोहब्बत करते थे, तो उनकी बहन भी आती थी तो उनको इज्जत देते थे, उनकी सहेलियों के घर कोई बकरी जिबा होती थी तो गोश्त भिजवाते थे, यानी जो जो कोई दूर हो आपसे या फौत हो चुका हो उनके रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक कर लें। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हलाकत की दुआ मांगी थी मिंबर पे जब चढ़ रहे थे, जो तीन दुआएं मांगी थी जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन फरमाई थी, उसमें एक ये भी दुआ थी कि हलाक हो जाए वो आदमी जो अपने माँ बाप दोनों को या एक को बुढ़ापे में पाए और उससे जन्नत नहीं उसने कमाई ना तो वो आदमी हलाक हो जाए, वो ये दुआ है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इसके बाद तो फिर हम ये सोचें कि ये तो एक मस्ट चीज है, और आज ये है कि बड़े बड़े और नेकी के काम चैरिटी वर्क हो रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है भाग दौड़ फलां, लेकिन ये जिसका हुक्म अल्लाह ने अपनी इबादत के बाद दिया इसके अंदर कोताही है। सबके साथ बातचीत हो रही है, सबका हाल है वाल हो रहा है, लेकिन जो माँ बाप है उनको पूछा नहीं जा रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अल्लाह के नजदीक महबूब तरीन अमल कौन सा, تو بتایا گیا نماز اپنے وقت پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز اپنے وقت پہ پڑھنا. پھر پوچھا گیا کون سا عمل اس کے بعد ہے، فرمایا ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا. یہ بخاری اور مسلم میں روایت ہے، یعنی سیکنڈ نمبر پہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا ہے. تو ماں باپ کے ساتھ ڈائریکٹلی بھی نہیں گستاخی کرنی، اور کوئی ایسا کام بھی نہیں کرنا جو گستاخی کا سبب بنے. اور جہاں پہ کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دفعہ فرمایا کیا میں تمہیں کبیرہ گناہ کے متعلق نہ بتاؤں، کیا میں تمہیں کبیرہ گناہ کے متعلق نہ. صحابہ نے فرمایا کیوں نہیں یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا اللہ کا شریک بنانا یہ کبیرہ گناہ، اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا یہ کبیرہ گناہ. اس کے بعد آپ نے جھوٹ کی بات کی تھی جو تین دفعہ کی تھی، اس میں سیکنڈ کبیرہ گناہ جو ہے نا وہ ماں باپ کی نافرمانی. اور یہ تو آپ سب کو پتا نا، تین دفعہ حسن سلوک کے مستحق کا پوچھا گیا کہ میرے نیک سلوک کا مستحق کون ہے، تو تین دفعہ فرمایا ماں. اور ہم سب اس کے اندر اپنے قصوروں کو دیکھیں کہ ہم نے دوستوں کے ساتھ بھی اچھا کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھی طرح بولتے ہیں، اور فرینڈز اور سرکلز اور اپنی ان کے ساتھ، لیکن جب ماں باپ کی بات آتی تو پھر وہ کہیں نہ کہیں ڈنڈی مار دیتے ہیں. اور یہاں پہ جب اپنے پر جھکانے کی بات آئی تو اس کے اندر یہ بھی ہے کہ ماں باپ کی اچھی طرح کفالت کرو، ان کو پر خرچ کرو، ان کو الگ نہ کرو، انہوں نے بھی تو بچپن میں تمہارے پر خرچ کیا تھا. اور جیسے پرندہ ہے نا، جیسے پرندہ اپنے اڑنے کا ارادہ کرتا ہے اپنے پروں کو پھیلا لیتا ہے، اور جب پرواز ختم کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے اپنے پروں کو سکیڑ لے کرتا ہے، جھکا دیتا ہے. اسی طرح بازو اور پر پھیلانا، پروں کو جھکانا، توازو کا، انکساری کا، عجز کا ایک اشارہ ہے اس میں. اکڑ اکڑ کے نہ بات کرو ماں باپ کے آگے کہ کوئی وجہ سے بہت بڑی چیز ہو اور آپ کیا چیز ہیں، نہیں. اور یہ جو ہم دعا کرتے ہیں ربنا غفر لی ولی والدی، سورہ ابراہیم میں آتا ہے نا، تو اس کے اندر بھی ہم اپنی مغفرت کے، اپنے والدین کی مغفرت کی بھی دعا کرتے ہیں، اس کو بھی سمجھ کے دل کے ساتھ دعا کریں. اللہ تعالیٰ ہم سے یہ حقوق ادا کروائے، کیونکہ اس میں ہماری کوتاہی ہوئی، اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں کو معاف کر دے. جو انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ماں باپ کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ہر نظر کے بدلے حج مبرور کا اجر عطا فرمائے گا، حج مبرور کا. تو صحابہ نے پوچھا تھا کیا کوئی بندہ 100 دفعہ بھی دن میں رحمت کی نظر سے دیکھے پھر بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں. اور یہ وہی دیکھ سکتا ہے نا جس کے پاس ماں باپ ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تین انسانوں کی طرف اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا، تین لوگوں کی طرف، اور ان میں ماں باپ کا نافرمان، عادی شرابی اور احسان جتانے والا. اور آپ کو اس بندے کا بھی پتا ہوگا جو نوجوان تھا اور مرنے کے قریب تھا، لیکن اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھے لا الہ الا اللہ کہو، وہ کہہ نہیں پا رہا تھا، اس کے منہ سے نہیں نکل رہا تھا لا الہ الا اللہ. تو آپ نے پوچھا کہ نماز پڑھتا ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کی والدہ زندہ ہے؟ تو کسی نے کہا کہ ہاں زندہ تو ہے، لیکن یہ اپنی والدہ کی نافرمانی کرتا. تو آپ نے فرمایا والدہ کو بلا کے لاؤ. اسے پوچھا یہ تمہارا بیٹا ہے؟ اس نے کہا ہاں. آپ نے فرمایا کہ اگر میں آگ جلاؤں اور اس کو اس کے اندر ڈالوں تو کیا تم اس کو برداشت کر لو گے، اس کو معاف کر دو؟ اس نے کہا کہ نہیں میں نہیں معاف کرتی. آپ نے فرمایا میں آگ جلاؤں اور اس کو اس میں ڈالوں تو تم برداشت کرو گی؟ تو آگ جلاؤ اور اس کو اس کے اندر ڈال دو. اس نے کہا نہیں میں معاف کرتی. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کلمہ کہا تو اسے کلمہ ادا ہوا تھا. انہیں اتنی حد تک ہے کہ یہ زندگی کے اندر بھی انسان کے لیے ایک وہ بن جاتا ہے، سزا بن جاتی ہے یہ نافرمانی. ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب جانتا ہے زیادہ جو تمہارے دلوں. یعنی کیا مطلب؟ یعنی تم ان کی جو کر رہے ہو، جو بھی ان کی خدمت ہے یا تم نے ان کو رکھا ہوا ہے، تو بیزاری کے ساتھ رکھا ہوا ہے، ہاں مصیبت ہے کیا نہیں ہے، اور یا کس طرح تمہارے دل میں کیا جذبات ہیں اللہ کو پتا ہے، یا ان سے जायदादें बटोरने के लिए रखा हुआ है कि देखो बुढ़ा मरेगा, बुढ़ी मरेगी तो किसी तरह हमें मिलेगा, तो इस वक्त तक इनको अपने पास रखो ताकि ये हो कि हमें ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले, इसलिए रखा हुआ है। या फिर खानदान में वाह वाह के लिए कि जी माँ बाप को इन्होंने ही संभाला था, आखिरी वक्त पे यही थे पास, यही देखो कितने अच्छे हैं ये, इसलिए तुमने रखा हुआ है और इसलिए तुम उनकी केयर कर रहे हो। तो अल्लाह ताला को बेहतर पता है तुम जो तुम्हारे दिलों में, या बाज दफा इंसान उनकी बात को नहीं मानता इसलिए कि वो गलत बात कर रहे होते हैं और वो उसमें उनका नुकसान होता है, तो अल्लाह को बेहतर पता है कि तुम उस इस वक्त उनकी खैर ख्वाही के लिए कर रहे हो। होता है ना बाज दफा कि उनकी वो मसला कहें कि उनको शुगर है, वो कहते हैं कि नहीं हमें मीठा दो, वो बच्चा नहीं मानता, तो अल्लाह को पता है कि इसके अंदर खैर ख्वाही। इन तकूनु सालेहीन, अगर तुम होगे नेक तो इन्नहु काना लिल अव्वाबीन गफूरा, यानी अगर तुम नेकी का इरादा रखते हो, तुम उनका वो बस ना अपना इलाज नहीं कराना चाहते, वो अपनी दवाई नहीं खाना चाहते, आप उनको जबरदस्ती करके उनको बात कर रहे हैं और उनको जबरदस्ती चीज के ऊपर कायल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब अल्लाह को बेहतर पता है आपके दिल के अंदर तो नेकी है ना, आप उनके हक में कोई कमी नहीं कर रहे, वो ना समझी कर रहे हैं, कभी गुस्से में कर रहे हैं, कभी वो किसी और उसमें है, वो नहीं समझ रहे उस बात को, तो अल्लाह तो को पता है कि आपका दिल कैसा है। या बाज दफा वो गलत अकीदे पे होते हैं, आप उनकी नहीं मानते, तो अल्लाह रुजू करने वालों को उनको माफ करने वाला। इसके अंदर ये भी आ सकता है कि कभी इंसान से गलती हो जाती है, ना समझी में बेअदबी भी हो जाती है, कभी वो उफ कर भी देता है, कभी वो कुछ आगे से बात उनको बदजुबानी कर देता है, उसके बाद उसको एहसास होता है, इंसान कमजोर है ना, गलती सबसे हो जाती है, तो फरमाया अभी सलाह कर लो, अब तुम ठीक हो जाओ, अगर तुम वापस रुजू करोगे, वापस आ जाओगे। अवाब क्या है? बार बार रुजू करने वाला। अगर तुम वापस रुजू करने के लिए अल्लाह की तरफ आओगे, माफी मांगोगे, तो अल्लाह ताला भी तुम्हें माफ कर देगा, उसको गफूर पाओगे। और इसके अंदर फिर हम सब के लिए एक रास्ता निकल आता है कि हमने जो भी पिछले जमाने के अंदर की हैं गलतियां, माँ बाप जिंदा हैं तो हम उनसे माफी मांगे, और अगर नहीं है तो हम फिर अल्लाह ताला से माफी मांगे और उनके लिए भी मगफरत की दुआएं करें, वो तो दुआ हर सूरत ही करनी है, मगर जहां पे गलती हो जाए तो जितनी भी दूर निकल जाए। अवाब वो है कि जो यानी रजू कर लेता है, वापस आ जाता है, चाहे जितनी भी दूर चला गया लौट आता है, तो लौट आएंगे वो जो ना समझी में माँ बाप की परवाह नहीं की, या उस वक्त ना कोई खिदमत की, या उस वक्त बड़ी बड़ी बातें कर दी, तो अब अल्लाह ताला इतना मेहरबान है, वो बंदे को इस रिग्रेट में नहीं रहने देता, वो कहता है तुमने अगर नेक बनना चाहते हो ना, तो अगर तुम्हारे अंदर नेकी का इरादा है और तुम समझते हो कि मैंने से गलती हुई है, तो वापस आ जाओ, अपनी गलतियों का अजाला कर लो, जब तुम पलट आओगे ना तो फिर तुम देखना कि अल्लाह ताला को गफूर पाओगे। आप देखें कि मेरा नहीं ख्याल के कोई भी बच्चे ऐसे होंगे जिनसे कभी भी नहीं कोई गलती हुई, हर एक से कभी ना कभी माँ बाप के हक में कोई कमी, कोई कोताही, कभी कोई हम इंसान है, जल्दबाजी भी है, गुस्सा भी है, अकल भी नहीं थी, तो कहीं ना कहीं गलतियां तो हुई, तो अब हम पलट आए। अब यहां तक वालदैन का चैप्टर तो मुकम्मल हुआ, आगे आया उसके बाद वालदैन के जरिए जो रिश्ते जुड़े हुए, बाप के जरिए और माँ के जरिए कौन कौन से रिश्ते होते हैं, पुप्पी है, चचा है, खाला है, मामू है, दादी है, नानी है, दादा है, नाना है, ये सारे रिश्ते हैं, ठीक है। अब करीब तरीन रिश्तेदारों का ज्यादा ही हक होगा, फिर आगे आगे वालों का उससे कम और उससे कम। अच्छा, अब फरमाया वो आता दल कुर्बा हक्कहू, दो कराबत वालों को उनका हक, कराबत दारों को, रिश्तेदारों को अब उनका हक दो। एक तो कराबत के रिश्ते हैं जो आपके रिश्ते हैं, जो आपके उनके रिश्ते हुए, और एक जो शहर के जरिए रिश्ते होते हैं यानी कि ससुराली रिश्ते हैं, उनके साथ भी, ये शोहर के जरिए जो रिश्ते बनते हैं उनके साथ भी, उनके भी हकूक अदा करो। और देने की बात आई यानी, और उनके हक की बात आई है, देखिए हक का हू उनका हक, यानी ये कोई आप एहसान नहीं कर रहे किसी के साथ अच्छा सलूक करके, किसी के साथ किसी को तोहफे तहाइफ दे के, या किसी की माली इमदाद करके, या किसी की देखभाल करके, जरूरियात का ख्याल करके, दुख सुख में अगर आप काम आ जाते हैं तो ये कोई आप एहसान नहीं कर रहे। क्योंकि फौरन इंसान को होता है जी हम तो फलाने वक्त में उसके काम आए थे, हम तो फलाने वक्त में ये किया था, ये उनका हक है। ठीक है, ये उनका हक है, तो उनको उनका हक दो, ये भी तुम्हारे जिम्मे है। रिश्तेदारों को जहां पे माल खर्च करने की जरूरत है माल खर्च करो, जहां पे और किसी तरह से उनको तुम्हारी सपोर्ट की जरूरत है तो और सपोर्ट करो, मगर ये उनका हक अदा करना भी इंसान की जिम्मेदारी है। अब उनके अंदर बहन भाई, तो अपने बहन भाई भी आ गए, अपने माँ बाप की बहन भाइयों के बच्चे भी आ गए, आगे से आगे जो रिश्ते हैं और खास तौर पे जो महरम रिश्ते हैं उनका ज्यादा ही हक है इंसान के ऊपर। फिर उनसे आगे जिस तरह सर्कल बड़ा होता जाता है तो फिर जाहिर है थोड़ा जाहिर है उनके हकूक थोड़े कम होते जाते हैं। सबसे बड़ा हक है जो बिल्कुल करीबी है, बाप की तरफ से हो या माँ की तरफ से, उनके साथ नेकी करना और उनके मुतल्लिक कोई वसीयत करना अगर है तो वो भी। बाज़ उलमा ये कहते हैं कि जो रिश्तेदार महरम नहीं है, जैसे चचा जाद है, मामू जाद है, उनका हक ही है कि उनसे ताल्लुक रखा जाए, उनसे मुलाकात की जाए, उनसे अच्छी माशरत रखी जाए, तंगी खुशी में मेल जोल रखा जाए उनके साथ, कभी गम है खुशी है तो उनके साथ आप रखें अपने टाइज। और आज के वक्त में ये मैं आपको बताऊं, रिश्तेदारों के साथ तोड़ना बहुत आसान है, इसलिए कि किसी को किसी की जरूरत ही नहीं, हर एक अपनी जिंदगी में इतना बिजी है कि ये जरूरत ही नहीं समझता कि क्या जरूरत है, हमें क्या एडेड एक अपने हेडेक लेने की जरूरत है। तो ये एक वो समझी जाती है कि मतलब एक बर्डन समझा जाता है रिश्तेदारों के साथ रखना, वो शायद ना आपकी जरूरत हो ना उनकी जरूरत हो, लेकिन ये अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर फर्ज कर दी है जब कुरान में ये आ गया, तो हमने ये समझ के उनके साथ रखना है कि कुरान कहता है हमें कि हमने इनके इनके साथ जुड़ना है। और जो कराबतदार में जो महरम रिश्ते हैं उनके ऊपर खर्च भी करना है। अब वालदैन के साथ कर लिया, उनसे नेकी से फारिग हो गए, अब तुम पे वाजिब है बाकी रिश्तेदारों के साथ दर्जा बदर्जा नेकी करो, दर्जा बदर्जा जैसे जैसे उनके दर्जे हैं। तो सबसे क्लोजर्स तो आपके बहन भाई हो जाते हैं ना, जिनके एक ही पेड़ से जो पैदा हुए हैं। अब जहां पे रिश्तेदारी की बात आ गई, ये भी एक ऐसा ही समझ लें, ये सारे ना हमारे पेपर्स हैं, टेस्ट हैं हमारे, और मुश्किल टेस्ट हैं, क्योंकि आप अपने सहेलियों को, अपने दोस्तों को चूज कर सकते हैं, आप अपने रिश्तेदारों को चूज नहीं कर सकते। उनकी कई बातें बुरी लगती हैं, वो कई बातें फॉर ग्रांटेड लेते हैं, वो आपको कुछ समझते नहीं है। अब दोस्त तो एक छोड़ के आप दूसरा बना सकते हैं, रिश्तेदार को कैसे आप बदलें, अब वो तो जो हैं सो हैं, उन्हीं के साथ सबर करके आपको चलना है, उनकी बातों के ऊपर, उनकी जो भी आपके साथ रवैये हैं उनको बर्दाश्त करते हुए चलना, सिर्फ इसलिए कि अल्लाह ताला को हुक्म। और उनको इज्जत देना भी उनका हक है, उनको ख्याल रखना भी उनका हक है, और खर्च करना तो वाकई वो जो मतलब ये नहीं कि वो जरूरतमंद है तो खर्च करें, बल्कि तोहफे तहाइफ की सूरत में भी खर्च करना, और अगर जरूरत है तो फिर तो जाहिर है खर्च करना जिम्मेदारी बन जाता है। वल मिस्कीन व अबन सबील, और मिस्कीन को भी उसका हक दो और मुसाफिर को भी, उनकी भी मदद करो, सिर्फ जकात ही नहीं इसके अंदर फिर और भी खर्च करने आ गए। वला तुबज़िर तबज़ीरा, और ना तुम खर्च करना बेजा खर्च करना। तबज़ीर क्या है, यानी कि इंसान, जैसे मैंने आपको बताया कि बीज को फेंकना होता है, इसी तरह माल को जाया करना, फेंकते फिरना, खर्च करने की जगह नहीं, जैसे जो होता है ना, खर्च करने को जगह नहीं मिलती, जब माल भी इतना आ जाता है, अब किधर खर्च करें, फजूल। एक होता है इसराफ। इसराफ क्या है कि जायज चीज पे बेजा खर्च करना, जायज है लेकिन बेजा खर्च किए जा रहे हैं। और तबजीर क्या है कि जगह भी नाजायज है, आप वो नहीं वहां पे खर्च कर सकते। मसलन अब तबजीर सबसे ज्यादा ये फजूल खर्चियां कहाँ होती हैं, जब इंसान की शादी ब्याह होती हैं, जब ऐसी शो ऑफ की जगह होती हैं, या बाज दफा आम जिंदगी में भी, यानी पैसा फेंकते हैं, उसकी कदर नहीं है कि अल्लाह ताला ने एक नेमत दी हुई है, उसकी नाशुक्री है ये कि जो है ना इंसान इस तरह की फजूल खर्चियां करे। और ये माल का याद रखे पर्चा अलग है, ये टेस्ट अलग है, आखिरत में कंपलसरी 2-5 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चंस जो हैं आपके माल से हैं। मैं आपको वो पहले गैस पेपर दे देते हैं ना, ये गैस पेपर नहीं, ये तो बिल्कुल ही कंफर्म पेपर है, ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब कैसे होती है तब्जीर? मसलन है दुल्हन का जो जोड़ा है वो एक दिन पहनना, और 2 लाख का जोड़ा बना लिया, इतने का बना लिया, ऊपर पता नहीं क्या क्या लगे हुए, 50-50 जोड़े बन रहे हैं, दिन रात जोड़े बन रहे हैं, लोगों को दिखाना भी तो है हमने कितने जोड़े दिए, मेकअप करा रहे हैं उस जगह से, करा रहे हैं ऐसी जगह से, कि ये तब्जीर हो गई। जो हलाल की बास उलमा कहते हैं हलाल पे भी इतना ज्यादा इस तरह से खर्च कर देना, बास हलाल में भी जहां पे यानी खर्च करना बुरा नहीं, वहां पे भी इतना ज्यादा खर्च कर देना, वो भी तब्जीर बन जाता है, एक्स्ट्रा विगेंट हो जाना। अब इसके अंदर कोई लिमिट नहीं कि मैं आपको बता दूं कि 50,000 का जो है ना वो तबजीर हो जाएगा और इतने का नहीं होगा, नहीं, वो हर एक को अपना खुद पता है कि उस कितना तबजीर में आ जाता है। बसंत आ गई तो पतंगे उड़ाने के ऊपर, डोरों के ऊपर इतने पैसे लगा जाने, तबजीर है। अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नल मुबद्दिरीन कानू इख्वान शयातीन, ये जो फजूल खर्ची करने वाले हैं ना ये शैतान के भाई हैं। शैतान भी नाशुकरा था ना अल्लाह का, ये भी अल्लाह के नाशुकर हैं, उन्होंने अल्लाह की नेमत को जाया किया। क्योंकि भाई भाई एक ही तरीके पर होते हैं ना, जो फजूल खर्च है वो रिश्तेदार हैं शैतान के। और आजकल अल्लाह माफ करे फजूल खर्ची को जो है ना हम फख्र समझते हैं, जी हमने इतने वहां पे लगा दिए, मैं तो मॉल गई मैंने तो इतने खर्च कर दिए, मैंने तो ये चीज इतनी महंगी ले गई, पैरों के नीचे रखने वाला कारपेट है या वो जूते हैं पहनने वाले वो इतने महंगे कर लिए कि बेतहाशा, ऐसी ऐसी जगह खाने खाए जहां पे कई लोग हैं जो कि 2 वक्त की रोटी नहीं उनको मिलती, और इतने महंगी जगहों पे जाकर खाया कि 1 वक्त का खाना आपका पूरे उनके महीने के खाने के बराबर हो गया, या नमूदो नुमाइश में खर्च कर लिया, डीजे आ रहे हैं तो उसके ऊपर इतने वीडियो बन रही है उसके ऊपर इतने खर्च हो गए, फोटो सेशन हो रहे हैं उनके ऊपर इतने खर्च हो गए, और वो खर्चे खत्म होने का नाम नहीं लेते, वो भी इख्वान शयातीन ही बन गए ना। फिर आप देख लें अपनी शादियां एक निकाल के देख लें, अब मैं दिखावों को तो वैसे ही शौक होता है, तो एक एक फंक्शन पे कितना खर्च होता है अंदाजा करें, उससे कितने बच्चियों की शादियां हो सकती हैं, इतनी बच्चियां जो इस वजह से बैठी हों के वो शादी का खर्चा नहीं उठा सकते। अब हम कई दफा कहते हैं नहीं जी हम चैरिटी में भी दे देते, तो वो इसको जायज नहीं बना देता। जैसे एक जगह पे आता है कि जो है ना अगर आपने बहुत भी खर्च कर दिया, बहुत भी खर्च कर दिया अल्लाह के रास्ते में या उसमें, तो वो इसराफ नहीं होगा, लेकिन अगर आपने 1 दिरहम भी खर्च कर दिया जो नाजायज जगह है वहां पे खर्च कर दिया, तो वो इसराफ हो जाएगा, वो तबसीर हो जाएगी। तो यानी समझ लें कि जिस जगह खर्च करना आपके लिए सही नहीं है, जायज नहीं है, वहां पे थोड़ा भी खर्च करना नाजायज हो जाता है। थोड़ा भी खर्च करना वो कहते तो इतना ज्यादा, तो इतना तो ठीक ही है ना, जो नाजायज जगह है हराम जगह है वहां पे नहीं खर्च कर सकते। आप देखिए फौरन हक उनको हक देने के बाद फौरन ये इसराफ की बात क्यों आ गई, इसलिए क्योंकि जब आप इतनी इधर उधर जगहों पे खर्च करेंगे तो फिर कुछ रह ही नहीं जाता कि फिर आप इन रिश्तेदारों पे खर्च करें, मुसाफिरों पे खर्च करें, फिर कहाँ इतना रह जाएगा, जाए जगहों पे खर्च करने के लिए तो नहीं बचेगा ना। जब एक लड़की लाखों का जोड़ा ही बना रही है तो वो कैसे किसी गरीब बच्ची की शादी के लिए हेल्प कर सकेगी, जब अपने ही खर्चे नहीं खत्म होंगे। आज हमने जहां लगाना है वहां पे नहीं लगाते, जो हकदार हैं वहां पे एक एक पैसा गिनते हैं कि इतना इनके ऊपर खर्च हो गया, और जहां पे हमने अपनी शो शाह के लिए खर्च करना होता है वहां पे हम सोचते भी नहीं है दूसरी दफा कि कितना खर्च हो रहा है। तो अल्लाह ताला ने याद रखे, ये इतनी बुरी चीज है, ये कोई फैशन या इसको कोई बड़ी फखर की बात नहीं समझना चाहिए, बल्कि तबजीर करना शैतान के भाइयों में से होना, बिला जरूरत बिला मकसद खामखा उड़ाए जाना, उधर वो सिनेमा में जाके बैठे हैं उधर उड़ा दिए उधर खर्च कर दिए, आप कहेंगे नहीं सिर्फ इतने की तो टिकट आती है कौन सी ये महंगी है, नहीं वही जैसे मैंने आपको बताई बात, जो नाजायज जगह है वहां पे थोड़ा भी खर्च करना हराम है। और वकाना शैतानो ली रब्बी ही कफूरा, शैतान भी अपने रब का नाशुकरा था। नाशुकरापन ये भी होता है कि नेमत को मिस यूज करना, नेमत को जाया करना, और ये नेमत को जाया करना है। और हम आजकल इसके अंदर बहुत आगे चले गए, बहुत आगे चले गए। हमें को मस्जिद पे खर्च करने हो गए तो हम बहुत हाथ एकदम बंद कर लेते हैं, लेकिन हमारे घरों में हमारी और शौक जो है उनके अंदर खर्च करने हो तो पता भी नहीं चलता, एक एक पर्स हम उतने का उठा लेते हैं जितने शायद हमें मस्जिद में देने बहुत मुश्किल लगे। तो अगर हम नेक बनना चाहते हैं ना, और हम दीनदार अगर हैं, तो ये ना हो कि हम अपने आप को सोचें कि मैं बड़ी दीनदार हूँ, बड़ा कुरान पढ़ती हूँ, लेकिन इख्वान शयातीन में हूं। तो सब चेक करें कि हम इख्वान शयातीन में तो नहीं है, शैतानों के भाई तो नहीं है हम, फजूल खर्चियां कर करके उठे और कोई काम नहीं है, बस मॉलों के चक्कर लगाते जा रहे हैं, घर में ला ला के भरते जा रहे हैं, बेकार गैराज भरे में है, कब स्टोर भरे में है, उड़ा रहे हैं माल क्योंकि है ही इतना, करें क्या उसका। और शैतान जो है उसका ये काम फसाद फैलाना भी है ना, तो फसाद कैसे फैलता है, ये जब एक बंदा तबजीर करता है आप देखें कि दूसरे 10 लोगों जो गरीब हैं उनके दिल में तो आता है ना कि देखो ये यानी इतना खर्च कर रहा है, हमारे पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, और इसकी बेटी की शादी के ऊपर वहां से वहां तक लाइनें लगी हुई है खानों की। एक जगह उन्होंने दिखाया कि किसी मिनिस्टर ने आना था तो वहां पे उन्होंने बताया कि इतने खाने थे, पता नहीं कितने 100 उन्होंने कहा कि इतनी डिशेस, और उसके अंदर हिरन का गोश्त और तीतर और बटेर और पता नहीं क्या क्या चीजें बताई कि इतनी तरह की चीजें, ये क्या है, तबजीर है, नाजायज। और अब आप सोचें जो कि वो पकाने वाले होंगे या जो काम करने वाले होंगे उनका क्या देख देख के हो रहा होगा। फिर एक शादी होता है उन्होंने कहा 6,000 इन्होंने गेस्ट बुलाए हुए, 6,000 लोग थे जो गेस्ट थे, ये ख्वाना शयातीन है। अब अपने आप को समझते रहे कि हम बड़े नेक है, नहीं जी हम वहां पे भी चैरिटी देते हैं, हम यहाँ पे भी देते हैं, हम कहीं और भी ना देखें अपनी, आप सिर्फ एक अपनी शादी उठा के देखें आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मैं ख्वाना शयातीन में हूं या नहीं, खुद देख लें। हम आइंदा के लिए फिर हमेशा के लिए केयरफुल हो जाए कि हमने माल को जाया नहीं करना, ये अल्लाह की नेमत है, और नेमतों को जब जाया किया जाए ना अल्लाह ताला नेमत वापस ले लेते हैं, फजूल खर्चना बेफायदा खर्चना। अल्लाह ताला हमारी कहां कहां कमियां है ना, इन चीजों को तो हमने कभी दीन के पेपर समझा ही नहीं, टेस्ट समझा ही नहीं। अब हम कमाते हैं तो जहां मर्जी हम खर्च करें, चाहे हम मेकअप कराने पे 20,000 लगा दें, चाहे हम कितने कर, वो तो हमारे लिए कुछ भी चीज नहीं। वाइमा तो रहमत में रबी का तरजुहा, अगर तुम एराज बरतो उनसे, किन से, जो रिश्तेदार आए हैं कुछ आपसे अपना हक लेने के लिए आए हैं, उनको कोई जरूरत है, अगर तुम उनसे एराज बरतते हो, यानी आप एराज किस लिए बरतते हैं, इब्तगा रहमत में रबी का तरजुहा, कि आप खुद अपनी उम्मीद रखे हुए अपने रब की तरफ से रहमत की, यानी आपके पास खुद भी तंगी है, अभी आपको उम्मीद है अल्लाह मेरा अपने फजल से मुझे भी कुछ दे अच्छे दिनों के, यानी आप खुद इंतजार में है, इब्तिगा यानी चाहने को, यानी आप वेट कर रहे हैं अपने रब की रहमत का, यानी अल्लाह मेरे दिन बदल दे, मेरे पास कुछ कशाइश हो जाए, मेरे पास तनख्वाह मिलनी है या कोई बोनस मिलना है, या आप उसकी उम्मीद रखते हैं कि रहमत की आप कोई तवक्को रख रहे हैं। रहमत यहाँ पे किसको कहा गया, यानी कि आपकी कोई कुशादगी हो जाए, अब वो रिश्तेदार मांगने आ गए। अब क्या है, आप दिन बदलने का इंतजार कर रहे हैं। उनको नहीं पता कि भाई आपके बिजनेस में क्या चल रहा है, आपके इसमें क्या चल रहा है, आपके कितने हाथ तंग है। अब आप उनकी डिमांड पूरी नहीं कर सकते, तो अब क्या करेंगे? उनको कहेंगे हर बार तुमने मेरा ही घर देखा है और नहीं तुम्हें कोई जगह मिलती, मुंह उठा के आ जाते हो, पहले भी मैंने तुम्हारे बच्चे की छाती के अंदर इतनी हेल्प की थी, ये कहेंगे? नहीं। फकुल लहुम कौलम मैसूरा, आप नहीं भी दे सकते ना, उनसे नरमी से बात करो, नरमी से माजरत कर लो, उनको कहो कि अभी नहीं है, हालात जरा थोड़े ऐसे हैं, अल्लाह से दुआ करें अल्लाह ताला अपने फजल से मुझे भी और आपको भी अता करे, तो जब होगा तो हम जरूर करेंगे। क्या मगर उस वक्त उनको तंज करना, ताने देना, ये करना, अक्सर हम इस चीज को समझ लेते हैं कि ये अब जायज हो गया और कोई दूसरा हमारे दरवाजे पे आ गया तो क्या इसने हमारा ही दरवाजा देख लिया? तो और कुछ दे नहीं सकते ना, तो प्यार से बात तो कर सकते हो, उसी पे तुम्हें अजर मिल जाएगा। उसमें फरमाया ना, कौलो मारूफो मगफिरा, तुम अच्छी बात करना और दरगुजर कर देना, माफ कर देना, बेहतर है इससे कि तुम बाद में एहसान जताओ। वला तजालिया दका मगलूलतन इला उनुका, और ना तुम रखो अपना हाथ बंधा हुआ अपनी गर्दन की तरफ, अपना हाथ गर्दन से ना बांधो, यानी कंजूसी ना करो, यानी एक बुखल ना करो, इतना बुखल कर लो। और दो एक्सट्रीम्स हमें सिखा दी, हमारा रब कितना मेहरबान है ना, कि इस मामले में भी हमें गाइड किया कि पैसे कैसे खर्च करने, ना तो इतनी कंजूसी कर लो कि कहीं खर्च ही नहीं करना, और ना ही ऐसा करो वाला तबसुत हा कुल्लल बस्ती फतकोदा मलूम महसूरा, और ना फैला दो इसको इस तरह फैलाना कि तू बैठ जाए मलामत ज्यादा हसरत ज्यादा। यानी क्या बेसिकली समझाया गया, एतदाल मयाना रवि। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने दरमियाना रास्ता इख्तियार एतदाल किया वो कभी तंग दस्त नहीं होगा, इसको तंगी नहीं आएगी, वो कभी तंग नहीं होगा, फकर नहीं आएगा, क्योंकि दरमियाना रास्ता करो ना। पहले कहा तबजीर ना करो, अब ये कहा ये भी ना हो कि हाथ बिल्कुल ही ऐसे कर दिया कि कहीं खर्च ही नहीं करना, जहां जरूरत हो वहां पे खर्च करना भी जरूरी है। तो एतदाल बेहतरीन तरीका। अच्छा हम क्या करते हैं, बार दफा सखावत में इतने वो हो जाते हैं, अपने पल्ले कुछ है नहीं और सखावत ऐसे कर दी कि लोग दुनिया आ रही है और देगे चढ़ा रहे हैं और इस तरह हो रहे हैं और कर्जे ले रहे हैं यहां से और इतना खर्च कर रहे हैं, या बाज लोग रिश्तेदारों में भी कहते हैं कि आमी रिश्तेदारों को मैंने हमने देना है, वो तो अल्लाह का हुक्म है रिश्तेदारों को देना, क्रेडिट कार्ड पे चढ़ाते जाते हैं, कर्जे लेते जाते हैं, खुद फंस रहे हैं कर्जों के अंदर, लेकिन बस मैंने उसको बुके भेजना है तो उसको ये तोहफा भेजना है तो उसका बच्चा हुआ तो उसको फलाना करना है, तो नहीं बाद में ये ना हो कि तुम खुद मलामत ज्यादा हसरत ज्यादा होके बैठ जाओ। देखें अगर नेकी करके सदका करके या भलाई रिश्तेदारों को दे के या कुछ, उसके बाद इंसान बाद में हसरतें करता फिरा कि हाय मैंने अपने ऊपर क्या कर्जा चढ़ा दिया, अपने आप को एक मुसीबत में डाल दी, तो उस नेकी का भी कोई फायदा नहीं है जिसके ऊपर इंसान बाद में रिग्रेट करे, पशेमान हो। अब देखे ना, पशेमानी होगी ना कि जब भाई मेरे पास था तो मैंने उसकी कदर नहीं की, इधर उधर उड़ा दिया, अब मेरे पास नहीं है, मैं दूसरों का मोहताज बन गया, अब लोगों के घरों पर चल पड़े कि जो है आप मुझे दे दो कुछ। अल्लाह ताला ने हमें इतना प्यारा रूल बता दिया ना, दोनों एक्सट्रीम से मना कर दिया, ना ये करो, अल्लाह को बखील नहीं पसंद है, बुखल जो है ना, जैसे एक जगह पे आता है कि जो शैतान है ना उसको मोमिन बखील ज्यादा यानी पसंद है, बजाय इसके के जो उसको फाजिर जो सखी है ना उससे ज्यादा उसको मोमिन बखील पसंद है। क्यों? वो कहता है ये बुखल जो इसके अंदर चीज है ना, इसके जरिए मैं इसको किसी ना किसी तरह अपने जाल में फांस ही लूंगा, लेकिन जो सखी है, सखी अल्लाह को बहुत पसंद है, सखी जो अल्लाह के रास्ते में देने वाला है वो देते हुए डरता नहीं है, अल्लाह ताला को वो बहुत पसंद है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे बुखल की मुजम्मत भी बताई है, क्योंकि इंसान इस बुखल की वजह से फिर ना रिश्तेदारों के हकूक देता है ना किसी और के, ना बाज दफा तो लोग अपने घर वालों की जरूरत पे भी नहीं खर्च करते, इतने बकील होते हैं, इतना ज्यादा वो अपने बीवी बच्चों की जरूरत पे भी नहीं खर्च करते, हालांकि ये उनकी जिम्मेदारी है घर वालों के ऊपर खर्च करना, और बाज इतने ही हाथ फैला लेते हैं, इतने ही बेदरे खर्च करते हैं कि उड़ाते फिरते हैं। हर घर में होता है ना, कोई कोई बाज मर्द बहुत कंजूस होते हैं, बाज बहुत ही खुले हाथ वाले होते हैं, इस तरह औरतें भी होती हैं। तो दोनों ही तरीके कोई अच्छे नहीं है। अब आप एक जगह लेक्चर सुन लें कि जी हाँ जी खर्च करना चाहिए और वो फंड रेजिंग हो रही है और वो उन्होंने बड़ी कोई हदीसें और ये बता दी और आप लेके जो अपना सारा जेवर दे आई, उसके बाद आपने कहा हाय ये मैंने क्या कर दिया, तो वो तो फिर उस सदके का कोई फायदा नहीं। तो ऐसा भी ना दो कि चाहे अल्लाह के रास्ते में ही देना। अब आप कहेंगे हजरत अबू बकर सिद्दीक ने भी अपने घर का पूरा माल दे दिया था। देखिए वो जिस ईमान के तवक्कुल के और यकीन के जिस लेवल पे थे, ना मैं हूं ना आप हैं। हम तो बाद में फिर पछताने बैठ जाते हैं कि ओहो ये मैंने क्या कर दिया, मैंने इतना क्यों दे दिया। तो पहले तो हम उस ईमान के लेवल पे तो पहुंचे ना, तो अल्लाह ताला ने जो बेहतरीन रास्ता ना वो हमें बता दिया, क्योंकि अल्लाह ताला नहीं चाहता कि फिर हम मोहताज होकर फिर किसी के पास चल पड़े। तो पहले से ही अक्ल से काम लो ना। ये देखिए जैसे ऐसे लगता नहीं है जैसे कोई माँ बच्चे को पास बिठा के बैठे, ऐसे नहीं करना, ये करना है ये नहीं करना। इस तरह से अल्लाह ताला ने एक एक बात को हमें समझाया है। वो नहीं चाहता कि हमें किसी तरह का भी नुकसान हो। कहीं बूढ़े माँ बाप हैं तो उनके लिए अल्लाह ताला खड़ा हो गया, कहीं रिश्तेदार हैं तो देखो ये ना हो कि तुम अच्छे अच्छे पहन रहे हो, अच्छा खा रहे हो, अच्छा पी रहे हो, तुम्हारे खानदान में ही कुछ लोग हैं तो उनको सोच ही नहीं रहे कि उनके ऊपर क्या गुजर रही है, उनकी भी ईद है या उनको भी कोई त्योहार है, तो उनका भी जी चाहता है कि हम भी कुछ पहने उड़े खाएं, कुछ अच्छा हमारे भी कुछ दिन फेरे। अब वो तुम्हारे पर तरफ तरसी हुई नजरों से देखते हैं, वो देखते हैं हमारे रिश्तेदार ही हैं जो इतने अच्छे हाल में, और तुम्हारा को भी उनको ख्याल ही नहीं करते। तो ये रिश्तेदार जो हैं, अब ये गरीब रिश्तेदार हैं, इनको हम इनवाइट भी नहीं करते क्योंकि हमें शर्म आती है कि हमारे दोस्त देखेंगे हमारे इतने गरीब रिश्तेदार हैं जो फलाने जगह पे रहते हैं और उस बस्ती में रहते हैं जो गरीबों की बस्ती है। तो हम नहीं 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 इनके लिए हम अलग फंक्शन कर लेंगे, हम अपने अमीरों के साथ नहीं इनको बुलाएंगे। नहीं ये नहीं है, उनका हक उनको दो, वो तुम्हारे खून के रिश्ते हैं, इसकी वजह से उनका हक है तुम्हारे ऊपर। और देखो ऐसे ना उड़ा देना, उड़ाओगे तो खुद अपना नुकसान करोगे। फिर उनके दिल का भी अल्लाह को ख्याल है जो चल पड़ता है किसी से कहने के लिए कि चलो बड़ी उम्मीद के साथ, चलो जी मेरे भाई हैं या मेरे मामू हैं या मेरे चचा हैं या मेरे कोई हैं जो कि इतने कशाइश वाले हैं, वो बड़ी उम्मीद से चला जाता है कि चलो ये मेरी हेल्प करेंगे, इस वक्त मुझे जरूरत है, इस वक्त मेरे पास जॉब नहीं है या जो भी। अल्लाह ताला उसके दिल को भी देखता है, देखो इसके साथ अच्छी तरह बात करना, इसका दिल ना टूट जाए, क्योंकि वो बड़ी आस लगा के आता है। मतलब इंसान किसी दरवाजे पे जाता है बड़ी उम्मीद के साथ जाता है ना, अल्लाह को उसके दिल का भी ख्याल है कहीं उसका दिल ना टूट जाए। वो तो पहले ही जाहिर है जो किसी के पास मांगने गया उसके पास कुछ कोई मोहताजी ही होगी, शौक से तो नहीं कोई जाता, तो उसका तो दिल पहले ही दुखी हुआ हुआ है, कोई उसकी जरूरत है ऐसी, और उसने उम्मीद भी बांधी हुई है। अब तुमने अगर ताने दिए तो उसका दिल टूट जाएगा। अल्लाह ताला दिखाता है। अरे एक बात मुझे याद आ गई कि मैं आपको रब्बे रहमहुमा में बतानी थी। शैतान ना दिल में डालता है, देखो तुम्हारे माँ बाप ने कौन सा तुम पे रहम किया, याद है तुम्हारे भाई के ऊपर तो इतने लाड करती थी, इतनी तुम्हारी अम्मी उसको करती थी, वही उनका लाडला था, वही उनका फेवरेट था, मेरे साथ तो कभी इन्होंने अच्छा किया ही नहीं, मुझे तो ऐसे किया, मुझे ऐसे किया। नहीं, उस वक्त अपने आप को याद दिलाएं कि नहीं मेरे साथ अगर उन्होंने ऐसे किया होता तो मेरी माँ मुझे पालती और उसके बाद मुझे पेट में रखा, पाला मुझे ऐसे। तो सारी बातें अपनी बचपन की याद करें कि मेरे लिए भी उतनी ही तकलीफें और उतना ही दर्द उठाया जितना मेरे बहन भाई के लिए उठाया। एक किसी इसलिए मैं बता रही हूँ, किसी ने कहा मैं क्यों अपने माँ बाप को सैर कराऊं, जब हम छोटे थे ये तो हमें कहीं नहीं सैर के लिए लेके जाते थे। तो हो सकता है उनके हालात ना हो सके, वरना कौन से माँ बाप होंगे बच्चों को कोई दिल चारा होगा नहीं लेकर जाते होंगे। अगर अब आप बड़े हो गए और आपको और उनकी शफकत नहीं याद, क्या सिर्फ सैर ही याद है। अल्लाहु अकबर। तो हमारे रब ने देखो हमें माल खर्च करने की भी आदाब बता दी, क्योंकि वो नहीं चाहता कि हमें नुकसान हो, वो नहीं चाहता कि हम कौड़ी कौड़ी के मोहताज हो जाए, वो नहीं चाहता। चाहे वो कहते हैं मेरे रास्ते में भी खर्च करना हो, ऐसे ना खर्च करो कि बिल्कुल ही हाथ खोल दो फिर तुम खुद पाई पाई के लिए दूसरों के दर पे जाते रहो। इन्ना रब्बा का या बसुतु रिज़्क़ा लिमन यशा व यक़दिरु, बेशक तेरा रब फैलाता है रिज़्क़ को जिसके लिए वो चाहता है और तंग करता है। रिज़्क़ अल्लाह के हाथ में, वो जिसको जितना चाहे ये उसकी प्लानिंग है। एक ही खानदान में एक बहुत अमीर होता है एक गरीब होता है, एक ही खानदान में किसी का कोई स्टेटस है, किसी को कोई स्टेटस। तो अल्लाह ताला का किसी को रिस्क देने का मतलब भी ये नहीं होता कि वो उससे राजी है तो उसको इतना रिस्क दिया हुआ है, और उससे नाराज है तो उसको इतना दिया हुआ है। ये उसकी प्लानिंग है, उसके उसकी मशीयत है, वो जो चाहे करे, कि उसके हाथ में। किसी को बहुत दे दे और वो बादशाह तक पहुंचा दे, किसी को फकरे फाके तक पहुंचा दे, ये उसकी मशीयत है। एक बात और हम इसके अंदर देखें कि अल्लाह ताला को जो तीन काम है ना, जो ना पसंदीदा है बुखारी और मुस्लिम में, एक है फजूल बहसें करना, एक है बहुत ज्यादा सवाल करना, बकसरत सवाल करना, और एक है माल को जाया करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खाओ पियो और सदका करो, लिबास पहनो, मगर तकबर ना करो और इसराफ ना करो, तबजीर ना करो। इतदाल के साथ, मियाना रवि के साथ खर्च भी करो, लेकिन ऐसा भी खर्च ना करो, कुछ ये भी ना करो कि जो है ना तुम्हारा हाथ बिल्कुल तंग हो। देखो अल्लाह ताला तमाम कायनात का रब है, उसकी मखलूक में से जिसको चाहता है रिस्क जितना देता है। तुम्हारे देने से नहीं किसी का रिस्क पूरा होना, तुम सोचते कि तुम दोगे तो पूरा होगा, नहीं, वो तो उसने एक चांस दिया तुम्हें नेकी। रिस्क की तकसीम भी वो कोई इस वजह से नहीं करता कि वो किससे खुश है और किससे नाराज है, ये उसकी मशीयत है। जैसे एक जगह पे आता है ना इब्ने कसीर में, एक हदीस है कि हदीस कुदसी है कि मेरे बास बंदों की मसलहत में है कि मैं उनको फकर में रखूं, अगर मैं उनको गनी कर देता हूं तो उनका दीन जाता रहता है, तो और मेरे बास बंदों की मसलहत में है कि मैं उनको गनी रखूं, मालदार रखूं, अगर मैं उनको फकीर कर देता हूं तो उनका दीन जाता रहता है। तो इसलिए अल्लाह ताला उसको फकीर रखता है और एक को गनी रखता है। और सूरह शूरा में अल्लाह ताला ने फरमाया 27 आयत में कि अगर अल्लाह अपने तमाम बंदों का रिस्क वसी कर देता तो जमीन पर फसाद हो जाता, लेकिन वो अंदाजे के साथ जितना रिस्क चाहता है वो नाजिल फरमाता है। वो मालिक है, उसकी मर्जी है ना, किसी को किसी से जलने की, हसद करने की जरूरत है ना, किसी देने वाले को ये सोचने की जरूरत है कि मैं ही देता हूं तो फिर किसी का गुजारा होता है। इन्नहु काना बिइबादिही खबीरन बसीरा, हाँ वो अपने बंदों के ऊपर खबर रखने वाला भी, देखने वाला भी। यानी तुम खर्च जो भी करते हो वो उसको जानता है, दूसरों पे कर रहे हो, अपने ऊपर कर रहे हो, जहां पे भी। और अगर नहीं किसी को दे सकते तो आके बहाने बना रहे हो कि या फिर वाकई नहीं तुम दे सकते, वो ये उसकी मखलूक है, वो सबके हवाल को जानता है। यहां तक तिलावत सुनते हैं, फिर आगे चलते हैं।
وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا.